कुछ नहीं करना। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन व्रत मनोचार वृंद की जय। श्री श्री गोंडताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन व्रत मनोचार वृंद की जय। गोड प्रेमानंदी All glories to cement devotees, all glories to cement devotees, all glories to cement devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga.
Hare Krishna, आप लोग अगर बिल्कुल शांत रहेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जो बातें कर रहे हैं वो कृपा करके बातें ना करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, हाथ पैर जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि बातें बिल्कुल ना करें। बड़ी सुंदर कथा है, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक दिन की बात है, श्री राधा की दो प्रधान सखियां, कौन है राधा की दो प्रधान सखियां, ललित और विशाखा, वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। एकदा मुख्य सख्यो द्वे विशाखा ललिता शोभे वृषभानु गृहम प्राप्य ताम राधाम जगमतु राम। अब सखिया बोली, सखिया बोली, क्या बोली, हे राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन बालकों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना, पहली सूचना, सबसे पहले समाचार मिला क्या कि ये तो रोज आते हैं, जिनका तुम गुणगान करते हो, चिंतन करते हो, ये तो रोज यहां आते हैं, वृषभानुपुर में आते हैं। यम चिंतयसि राधे तुम यद गुणम वदसि स्वतः सोपि नित्यम समायाति वृषभानुपुरे रभकै। हे राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। वे बहुत सुंदर हैं, अभी तक राधा रानी ने देखा नहीं है, केवल सुना है। तो कहते तुम देखो कितने सुंदर हैं वो। प्रेक्षणीयस्तु या राधे दर्शनीयोति सुंदरः पश्चिमायाम निशेतिन्याम गोचारण विनिर्गतः। राधा बोली कि मैं दर्शन करूंगी बाद में, पहले उनका चित्र बनाओ। राधा कहती हैं पहले उनका चित्र बना के दिखलाओ, फिर मैं दर्शन करूंगी। राधा बोली पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। लिखित्वा तस्य चित्रम ही दर्शयासु मनोहरम तर्य तत्प्रेक्षणम पश्चात करिष्यामि न संशयः। नारद जी कहते हैं, नारद जी ये कथा सुना रहे हैं किसको, राजा बहुलास को, कहते हैं तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था, वह चित्र उन्होंने तुरंत राधा के हाथ में दिया। अथ सख्यो विलिखिताम चित्रम नंद से सो शुभम नव यौवन माधुर्यम राधाय ददतुस्तरम। वो चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी, उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जागी, हाथ में रखे हुए चित्र को देखती हुई आनंदित होकर सो गई। उसको देखते देखते ही हृदय में चित्र रख करके क्या हुआ, राधा जी सो गई। तंद्रिष्ट्वा हर्षिता राधा कृष्ण दर्शन लालसा चित्रम करे प्रपश्यन्ति सुस्वापानंद संकुलां। अब सो रही है राधा अपने भवन में और क्या देखती हैं, सोते सोते देखती हैं स्वप्न में क्या देखती हैं, यमुना के किनारे भांडीर वन के एक प्रदेश में वो पीतपटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। नदर्श कृष्णम भवने शयाना घने प्रभम पीतपटम दधानम भांडीर देश यमुनाम समेत्य नृत्यंत मारा दृश्य भानु पुत्री। उस समय राधा की नींद टूट गई, अब तो बहुत दिक्कत हो रही है राधा रानी को, नींद टूट गई। सैया से उठकर श्री कृष्ण के वियोग से बेहाल होकर उन्हीं के रूप का चिंतन करते हुए तीनों लोगों को तिनका समझने लगे। तीनों लोगों को क्या समझा राधा ने, तिनका, कुछ नहीं, बेकार है सब, पूरी दुनिया तिनका है। तदैव राधा सैनात्मोत्थिता परस्य कृष्णस्य वियोगे विह्वलां संचिन्तयन्ति कमनीय रूपिणं मे नेत्रलोकीं प्रणवन् विदेहराण। इतने में नंद नंदन अपने भवन से चलकर संकीर्ण गली में आ गए। राधा रानी के महल के पीछे की जो गली है, संकीर्ण गली है, वहां पर आ गए। राधी निशांत काल हो गया, निशांत काल मतलब 3:22 से शुरू होता है। तो राधा की नींद टूटी और वो सपना सच्चा था, इसलिए कृष्ण आ गए वहां पर, संकीर्ण गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर राधा को दर्शन कराया, दर्शन करो अभी। और देखते ही राधा मूर्छित हो गई कृष्ण को देख करके। तरिहा ब्रजंतम स्वनाम ब्रजेश्वरम संकोच वीथ्याम वृषभानुपत्तने गवाक्ष मेत्यासु सखी प्रदर्शितम दृष्ट्वा कुमूर्छाम समवापि सुंदरी। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी ब्रजभानु नंदिनी का दर्शन करके मन ही मन उनकी कामना करते हुए अपने भवन को लौट गए। कृष्णोपि दृष्ट्वा ब्रजभानु नंदिनी स्वरूप कौसल्ययुताम गुणाश्रयाम कुर्वन् मनोरन्तुमतीव माधव लीला तनुस्ता प्रेयो स्वमंदिरम। ब्रजभानु नंदिनी राधा को इस प्रकार कृष्ण के वियोग में बेहवल देख करके सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने इस प्रकार कहा, आप लोग शांत हो जाएं तो बहुत कृपा होगी आपकी, आप लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो बड़ी कृपा रहेगी आपकी, कोई बातें ना करें। एवं ततः कृष्ण वियोगे बेहवलाम प्रभुत काम ज्वर खिन्न मानसाम समीक्ष राधाम ब्रजभानु नंदिनी वाच वाचम ललिता सखी वराम। ललिता ने कहा, हे राधे तुम क्यों इतनी बेहवल और व्यथित हो? सुंदरी यदि हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना प्रेम को बढ़ाओ, उनको पाना चाहती हो तो क्या करो, अपना प्रेम बढ़ाओ उनसे। कथम तुम बेहवला राधे मूर्छताती व्यथाम गताम यदि छसे हरिम शुभ्रो तस्मिन स्नेहम दृढ़म करो। इस समय उन्होंने तीनों लोकों के सुख पर अधिकार किया हुआ है, उन्होंने तीनों लोकों के सुख पर अधिकार किया हुआ है। हे सभी देही तुम्हारी दुख की ज्वाला बुझा सकते हैं, अगर उनकी उपेक्षा करोगी तो पैरों से ठुकराई हुई अग्नि के समान कष्ट प्राप्त होगा। अगर कृष्ण की उपेक्षा करोगी तुम तो कैसा कष्ट प्राप्त होगा, पैरों से ठुकराई अग्नि के समान कष्ट प्राप्त होगा। लोकस्यापि सुखम सर्वम अधिकृत्यासि साम्प्रतम दुखान दुखाग्नि हृत्प्रदहते कुंभकाराग्नि वच्छवे। नारद जी कहते हैं, राजन ललिता की बात सुनकर श्री राधा ने आंखें खोली और गदगद वाणी में इस प्रकार से बोली, ललितायाश्च तदन ललितम वचा श्रुत्वा ब्रजेश्वरी नेत्र उन्मील्य ललिता प्राह गदगदया गिरा। राधा ने कहा, हे सखी यदि मुझे श्याम सुंदर के चरण कमल नहीं प्राप्त हुए तो मैं अपने शरीर को धारण नहीं करूंगी, ये मेरा निश्चय है। ब्रजालंकार चरणों नाम प्राप्त हो यदि मैं किल कदा दिन विग्रह तरही नहीं तुम धारियाम्यहम्। श्री राधा की बात सुनकर ललिता भय से बेहवल हो गई और यमुना के तट पर श्री कृष्ण के पास गई। इति श्रुत्वा वचस्तस्या ललिता भय विह्वला श्री कृष्ण पार्श्वं प्रयो कृष्ण तीरे मनोहरे। और कृष्ण एकांत प्रदेश में कदंब के वृक्ष के पास अकेले बैठे हुए थे, वहां ललिता ने श्री हरि से कहा, माधवी जाल संयुक्ते मधुर धुनि संकुले कदंब मूले रहसी प्राह चे काकिनम हरिम। अब ललिता ने क्या कहा कृष्ण से, हे श्याम सुंदर जिस दिन से राधा ने तुम्हारे मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वह खंभे के समान स्तंभित हो गई है, खंभा जैसे अकड़ जाता है, खंभे के समान अकड़ गई राधा जब से तुम्हें को देखा है, काठ की पुतले की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं है। यस्मिन्दने चते रूपम राधया दृष्टि मद्भुतम तद्दिनात् स्तंभताम प्राप्ता पुत्र केव नमक्ति किम। अब उसको आभूषण, राधा को आभूषण कैसे मालूम पड़ते हैं, अग्नि की ज्वाला के समान सोने के आभूषण अग्नि की ज्वाला के समान लगते हैं, और सुंदर वस्त्र तपी हुई बालू के समान उसको लगते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी लगती है, और भवन भी उसका जंगल के समान लगता है।
अलंकार स्वर चिरे वैम वस्त्रम भरजर तो यथा सुगंधि कटुवन्यस्या मंदिरम निर्जनम वनम।
हे प्यारे, तुम ये जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल भी कैसा लगता है, बाण जैसा, और चंद्र चंद्रमा विष के समान मालूम पड़ता है। अतः राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो, तुम्हारा दर्शन ही उसके दुख को दूर कर सकता है।
पुष्पम पुष्पम बाणम चंद्रबिंबम विषकंदम अवेहि भो तस्य दर्शनम देहि राधाये दुख नाशनम।
तुम सबके साक्षी हो, भूतल में कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें पता नहीं है। तुम ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हो, परमेश्वर होने के कारण तुम सबके प्रति समान हो, फिर भी अपने भक्तों का भजन करते हो।
तेताक्षण किम विदितम न भूतले त्रिजशलम पासि हरस्यथो जगन यदा समानोसि जनेषु सर्वतन तथापि भक्तान भजते परेश्वर।
ललिता की ये ललित वाणी सुनकर ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले।
इति श्रुत्वा हरे साक्षात् ललितम ललिता वचः वाच भगवान देवो मेघ गंभीर या गिरम।
श्री भगवान ने कहा, हे भामिनी, मन का सारा भाव एकमात्र मुझ की ओर सबका प्रवाहित नहीं होता, अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है।
सर्वम हि भावम मनसः परस्परम नहि कतो भामिनि जायते ततः प्रेमैव कर्तव्यमतो मयि सुतः प्रेम्णा समानं भुवि नास्ति किंचन।
अरे पुजारी जी से प्रार्थना है कि बांटना बंद कर दें। पुजारी जी बिल्कुल बंद कर दिए बांटना, सबको बैठा दीजिए, कोई शोर ना करे। आप लोगों से प्रार्थना है, बातें ना करिए, शोर ना करिए। भांडीर वन में राधा के हृदय में जैसा मनोरथ हुआ था उसे मैं पूर्ण करूंगा। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ललिता से कह रहे हैं। सत्पुरुष अहेतुकी प्रेम का आश्रय लेते हैं, संत महात्मा उस अहेतुकी प्रेम को ही निर्गुण मानते हैं।
यथा ही भांडीर वने मनोरथो बभूव तस्या ही तथा भविष्यति अहेतुकम प्रेम च संधिराश्रितम तच्चापि संतः किल निर्गुणम विदुः।
जो मुझ केशों में और राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं और मेरे गोलोक धाम को वो पाते हैं।
ये राधिकायां मयि केशवे मनां भेदं न पश्यन्ति हि दुग्ध सौक्लवम् एव मे ब्रह्म पदम प्रयांते तदहेतुक स्फूर्जित भक्ति लक्षणां।
इस भूतल पर जो कुबुद्धि मुझ केशव में और राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं तब तक निश्चय ही नरक में पड़कर दुख भोगते हैं।
ये राधिकाया मयि केशवे हरौ कुर्वन्ति भेदं कुदियोजना भुवि ते काले सूत्रं प्रपतन्ति दुःखिता रम्भोरु यावत् किल चन्द्रभास्करौ।
श्री कृष्ण की सारी बात सुनकर ललिता उन्हें प्रणाम करके राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उसके मुख पर हंसी की छटा छा रही थी।
इत्थं श्रुत्वा वचः कृष्णं नत्वा तं ललिता सखीं राधां समेत रहति प्राह प्रहसितानमान।
ललिता ने कहा, हे सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह मधुसूदन भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित है, लोग अज्ञानवश इसे दो मानते हैं। तुम इच्छसि यथा कृष्णम तथा त्वाम मधुसूदन यवयोर भेद रहितम तेजस्त्वेकम निधाजने। तथापि हे सती, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। तथापि देव कृष्णाय कर्मं निष्कारणं कुरु येन ते वांछितं भूयात् भक्त्या परमया सती। ललिता की ये बात सुनकर राधेश्वरी राजेश्वरी राधा ने चंद्रानना सखी से कहा। इति श्रुत्वा सखी वाक्यं राधा राशेश्वरी नृपेण चंद्रान नाम ताहे सखी सर्व धर्म विदाम्बराम। राधा बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक और मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। श्री कृष्ण से प्रसन्नार्थम परम सौभाग्य वर्धनम माँ पुण्यम वांछितंदम भोजनम मदे कस्यचे। तुमने गर्ग जी के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम कोई व्रत और भोजन बताओ मुझको। तो या भद्रे धर्म शास्त्रम गर्गाचार्य मुखाश्रुतम तस्माद् व्रतम भोजनम वा दोहे मह्यम महामते। नारद जी कहते हैं, राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने एक क्षण तक विचार करके इस प्रकार उत्तर दिया। राधा वाक्यम दत्ता श्रुत्वां राजन सर्व सखी वरा चंद्रानना प्रत्युवाच संविचार्य क्षणम हृदि। चंद्रानना बोली, हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्य वाला श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत है तुलसी की सेवा। परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरे प्रदम श्री कृष्णस्यापि लब्ध्यर्थम तुलसी सेवनम मतम। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श ध्यान कीर्तन स्तवन सेचन पूजन किया जाए तो बड़ा पुण्य होता है। नवधा तुलसी भक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते यान्ति सुकृतं स्वभे। जो स्त्री या पुरुष चंदन युक्त तुलसी दल श्री कृष्ण के चरणों पर चढ़ाए उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अतः हे गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जिसे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे बस में रहे। तुलसी सेवनम नित्यम कुरु तुम गोप कन्यके श्री कृष्णो वसताम जाति ये नवा सर्वदेवी। चंद्रानना की ये बात सुनकर राशेश्वरी श्री राधा ने हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवा का व्रत आरंभ किया। इत्थम चंद्रानना वाक्यम श्रुत्वा राशेश्वरी नृपेण तुलसी सेवनम साक्षात् आरेभे हरे तोषणम। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया जिसकी दीवार सोने की थी। केतकी वन में, केतकी वन सोने की दीवार बनी है उस भवन में, और किनारे किनारे पद्मराग मणि जड़ी हुई थी। केतकी वन मध्य चा सत्यहस्तम सुवर्तुलम उच्चैर है मगचिन्धृति पद्मरागे तटम शुभम। सुंदर मंदिर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी और भूमि चिंतामणि से बनाई गई थी। हरिन हीरक मुक्तानाम प्राकारेण महोल्लसन सर्वतस्तोलिका युक्तम चिंतामणि सुमंडितम। बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। चारों ओर ताने हुए सुनहले बेतानों के कारण वह तुलसी मंदिर बेजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन जैसा लगता था। हे मैं ध्वज समायुक्तम उत्तोरण विराजितम हे मैन विताने परितो वैजी अंतम निविस्थुर। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य में हरे पत्तों से शोभित तुलसी की स्थापना करके राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। अभिजित मुहूर्त ये 11:34 के लगभग शुरू होता है। अभिजित मुहूर्त 48 मिनट का होता है दिन में। अभिजन नाम नक्षत्र तत्सेवाम साचकार समाहूते न गर्गेण दिशते न विधिना सती। गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई विधि से सती राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। श्री कृष्ण तो स्नार्थाय भक्त्या परमया सती इस पूर्णाम समारभ्य चैत्र पूर्णावधि व्रतम। व्रत आरंभ करके हर महीने तुलसी को सिंचन किया अलग अलग प्रकार से। कार्तिक में दूध से सींचा और मार्ग शीर्ष में गन्ने के रस से सींचा। पौष में अंगूर के रस से सींचा और माघ में आम के रस से सींचा। फाल्गुन में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से सींचा। चैत्र में पंचामृत से सिंचन किया। इस प्रकार व्रत पूरा करके ब्रजभानुनंद ने राधा ने गर्ग जी की बताई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन किया। कृत्वा निश्चिंचन दुग्धेन तथा से कुंचे क्षोरसेन वयम् द्राक्ष्यामृतरसेनापि स्थितया बहुमिष्टयाम् पंचामृतेन तुलसीम मासे मासे पृथक पृथक उद्यापने समारंभम वैशाखे प्रतिपद्यने गर्ग दृष्टेन विधिना वृषभानु सुतान्यपयम् षट पंचाशतमेर भोगैर ब्राह्मणाम दिलक्षकम्। उन्होंने 200,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। 200,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और किससे? 56 भोगों से 200,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और वस्त्र दिए और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे मोतियों का 1,00,000 भार और सोने का 1,00,000,000 भार गर्ग जी को दिया और 100-100 भार सोना और मोती राधा ने एक एक ब्राह्मण को दिया। संतर्प वस्त्र भूषा दैर दक्षिणाम राधिका ददौ दिव्यानाम स्थूल मुक्तानाम लक्ष्य भारम विदेहराण कोटि भारम सुवर्णानाम गर्गाचार्याय साददौ शतभारम सुवर्णानाम मुक्तानाम चा तथैवहि भक्त्या परमया राधा ब्राह्मणे ब्राह्मणे ददौ देव दुन्दु भयो ने दुर दुश्चापसरो गणाम तन्मंदिरो परिसुरा पुष्पवर्षम प्रचक्रिरे। उस समय आकाश में देवताओं की दुन्दुभियां बजी, अप्सराओं का नृत्य हुआ और देवता उस तुलसी मंदिर के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय सोने के सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुए। सोने के सिंहासन पर विराजमान तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। 16 वर्ष की अवस्था और श्याम कांति थी। सांवली है तुलसी देवी, सांवली है। मस्तक पर सोने का मुकुट, कानों में सोने के कुंडल पीतांबर धारण किए हुए और नागिन जैसी बेणी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतर करके तुलसी देवी ने राधा को अपने भुजाओं में भर लिया और मुख का चुंबन किया। तदा विरासी तुलसी हरि प्रियाम सुवर्ण पीठो परेशो भितासनाम चतुर्भुजापन्न पलाश वीक्षणाम श्यामा हिस्पुरद्वेम किरीट कुंडलाम पीतांबराच्छादित सर्पवेणीम सृजम दधानाम नववैजयंतीम खगासमुत्तीर्य रंगवल्लीम चुचुम्बराधाम परिरभ्य बाहुभिः। तुलसी बोली, हे कमलावती कुमारी राधे मैं तुम्हारे भक्ति भाव के बस में होकर परम प्रसन्न हूँ। तुमने केवल लोक शिक्षा के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यहाँ इंद्रिय मन बुद्धि और चित्त द्वारा तुमने जो जो मनोरथ किया है वो सब सफल होगा। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय सौभाग्य तुम्हारा बना रहे। अहम प्रसन्नास्मि कलावते सुते त्वं भक्ति भावे निजता निरंतरम कृतम तलोक्य व्यवहार संग्रहम त्वया व्रतम वामिनी सर्वतो मुखम मनोरथस्य सफलोत्र भूयान बुद्धिन्द्रिय चित्त मनोभिरग्रताम सदानुकूलत्वमलं पते परम स्वभाग्यमेवं परिकीर्तनीयम्। यों कहती हुई हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करते करके ब्रजभानुनंद राधा ने उनसे कहा, देवी गोविंद के युगल चरणारविंदों में मेरी भक्ति बनी रहे। किसने कहा? राधा रानी ने कहा तुलसी से। एवं वदन्तीं तुलसीं हरि प्रियां नत्वाथ राधा ब्रजभानुनंदिनीं प्रत्याह गोविंद पदारविंदयोर् भक्तिर्भवेन्मे विरिता ह्यहेतुकीं। तब हरि प्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से ब्रजभानुनंद ने राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त होकर रहने लगी। तथास्तु चोक्ता तुलसी हरि प्रिया थांतर दधे मैथिल राज सत्तम तदैव राधा ब्रजभानुनंद ने प्रसन्न चित्ता सपुरे बभूवः। हे राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण होकर राधिका के इस विचित्र चरित्र को सुनता है वो मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को प्राप्त करके कृतकृत हो जाता है। ही राधिकाख्यान मेदम विचित्रम चुनौती यो भक्ति परः पृथिव्याम त्रैवर्ग भावम मनसा समेत ते सेवने तपः प्रीतम प्रीतिम परीक्षण श्री कृष्णो ब्रजभानुपुरम ययौम। इन कैसे गए भगवान राधा के घर में स्त्री का वेश धारण करके। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया। चलते समय उनके पैरों में मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में घंटिकाओं की मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। अद्भुतम गोपिका रूपम चलन झंकार अनुपुरम किंकरे घंटिका शब्द अंगुली भूषितम कलाइयों में रत्न के कंगन है, बाहों में भुजबंद है, कंठ में और वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे हैं और लाल सूर्य के समान शीत फूल से शोभित केश पासों की बेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। रत्न कंकण के योर है मुक्ताहार विराजितम बालार्क ताटंक लसन कबरे पास है कौशलम। नासिका में मोती की बुलाक खिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा और स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने ब्रजभानु के भव्य भवन को देखा। नासा मोक्त के दिव्याभम श्याम कुंतल संकुलम धृत्वा स्वृजभानुश्चा मंदिरम संदर्शः। अब यहां पर राधा के भवन में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और आखिर भगवान ने राधा रानी को देखा। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को ब्रजभानुनंदिनी राधा ने देखा। समागताम ताम मणि मंदिर आज रेम ददर्श राधा ब्रजभानुनंदिनी तेजसा तल्लल नाहर तत्पिशो जातास्तरम चंद्र मसेव तारका। अब राधा जी जानती नहीं है कि कौन स्त्री है, लेकिन तुरंत ही सम्मान किया उस स्त्री का, दोनों बाहों से आलिंगन करके दिव्य सिंहासन पर बिठाया और लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके सुंदर पूजन आरंभ कर दिया। विज्ञाय तद गौरव उत्तम महं उत्थाय दौर्भ्याम परिरभ्य राधिकां दिव्यासने स्थाप्य सुरलोक श्लोक रीत्या जलाधिकम चारणय महारच्छुवम्। अब राधा ने कहा, जानती नहीं कौन है? कहती हैं, हे सुंदरी सखी तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है, तुम स्वतः आज यहां आ गई, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
स्वागतम ते सखी सुभेम नाम देयम बदा सुमेम भूरे भाग्यम ममे वाद्य भक्त्यागतया सुतः।
भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। तुम जहां तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वो नगर निश्चय ही धन्य है।
तत्मानम दिव्य रूपम दृश्यते नहि भूतले यत्र तुम वर्तते शुभ्रो पत्तनम धन्यमेवतन।
हे देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ, तुम किस कारण से आए हो यहाँ पर विस्तार से बताओ, मेरे योग्य जो कार्य हो वो तुम्हें अवश्य कहना चाहिए।
बद देवी सविस्तारम हे तुम आगमनस्य चाम मम योग्यम यत् कार्यम वक्तव्यम तत्त्वया खलु।
तुम अपनी बांकी चितवन से, मधुर वाणी से, मनोहर मुस्कान से, चाल ढाल से श्रीपति के समान दिखाई पड़ती हो, श्रीपति यानी कृष्ण के समान दिखाई पड़ती हो, कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम कृष्ण के समान मालूम पड़ती हो।
कदाक्षेण सुदीप्त्याचं वचसा सुस्मितेन वयं गत्या कृत्या श्रीपतिवन दृश्यते साम्प्रतं मया।
हे सभी, तुम रोज मुझसे मिलने के लिए आया करो, यदि ना आ सको तो मुझे अपना स्थान का संकेत बता दो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वो विधि सदा उपयोग में लानी चाहिए।
नित्यम सभे में मिलनाथ माव्रज अचेत सुसंकेत मलम विधेहि ये नैव संगो विधिना भवेधीम विधिर्भवत्या सदा विधेयः।
हे सखी, तुम्हारा ये शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि तुम मेरे प्रीतम ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी जैसी है जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है, अतः तुम मेरे पास रहो जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी।
आई तुम आई तदात्मा परम प्यो में तदा कृते श्री ब्रज राज नंदना ये नैव मे देवी हृतम तो चेत त्वयाननं देव मधुर दधामितम।
ये सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने राधा से इस प्रकार कहा। अब सुनो भगवान क्या कहते राधा से।
एवं राधा वचा श्रुत्वा माया युवती वेश धृंग उवाच भगवान कृष्ण राधाम कमले लोचनां।
श्री भगवान बोले, हे रंभोरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है, मेरा नाम गोप देवी है।
रंभोरु नंद नगरे नंद गे हस्य चोतरे गोकुले वस त्रिमेस्ती नाम ना हम गोपे देवता।
मैंने ललिता से ललिता के मुख से तुम्हारी रूप और गुणों का वर्णन सुना, अतः हे चंचल लोचनों वाली, मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर में चली आई हूं।
तद्रूप गुण माधुर्यम श्रुतम मे ललिता मुखा तद्दृष्टुम चंचला पांगी तंग्रहे हम समागता।
हे कमल लोचने, जहां सुंदर लवंग लता की सुगंध छा रही है और कुंज पुष्प खिल रहे हैं, वो तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देखा, इसके समान सुंदर इंद्र की पुरी भी नहीं है तुम्हारे नगर के समान।
श्रीमल्ल मंगलतिका स्फुट मोदिनी नाम गुंजा निकुंज मधुपैध्वनि कुं कुंज पुंजम दृष्टम श्रुतम नव नवम तब कंज नेत्रे दिव्यम पुरंदर पुरे पिनयत समानम।
इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ, परस्पर प्रीति करते हुए उपवन में शोभा पाने लगे।
एवं तयोर मेलनम तं बभूव मिथिलेश्वर प्रीतिम परस्परम कृत्वा वने तत्र विरेजतुः।
फूल की गेंद खेलते हुए दोनों हंसते और गीत गाते वन के वृक्षों को देखते इधर उधर विचरने लगे।
हसंत्यो ते च गायन्त्यो पुष्प कन्दुक लीलया पश्यन्तो वन वृक्षां च चेतुर मैथिलेश्वर।
कला कौशल से संपन्न राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी में कहा, कला कौशल संपन्नाम राधाम कमल लोचनाम गिरा मधुरिया राजन प्राहेदम गोप देवता। गोप देवी बोली, हे ब्रजेश्वरी, नंदनगर यहां से दूर है, अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूं, कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। दूरे वे नंदनगरम संध्या जाता ब्रजेश्वरी प्रभाते चागमिष्यामि तत्सकाशम न संशयाम। गोप देवी की बात सुनकर राधा के नयनों से तत्काल आंसू की धारा बह चली, रोमांच हो गया और कटी हुई वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े। निक्षिप्त सद्यो नयनाम रोमांच हर्षोद्गम भाव समृता रंभे रघुमा पतिता मरुधाता। ये देख सखियां तो विजन लेकर पास खड़े हो हवा करने लगी, वस्त्रों पर चंदन पुष्प के इत्र छिड़के और गोप देवी ने राधा से कहा, संकागता तत्र थगे गणास्वरम सुवेदियंतो व्रजने व्यवस्थितां श्रीखंड पुष्प द्रव संजय सर्जितां सुकां जगाद राधाम नपे गोप देवतां। गोप देवी बोली, हे राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता ना करो, यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय की सौगंध है, गोरस की सौगंध है और अपने भाई की सौगंध है। प्रभाते चागमिष्यामि मासोकम कुरु राधिके गोसभातुर गोरसस्य सपतो मे न चेदिदम्। यो कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बनाकर नंद गोकुल को चले गए। एवं उक्त्वा हरि राधाम समाश्वास्यन् पेश्वरे माया युवतवेशो तौयजो श्री नंद गोकुलम्। अब क्या हुआ, रात बीतने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि राधा का दुख दूर करने के लिए ब्रजभानु भवन में गए। अथ रात्र्याम व्यतीतायाम माया क्रोशिन वपुर हरि राधा दुख प्रशांत अर्थम ब्रजभानो और गृहम ययाम। उन्हें आया देखकर राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर लेवा ले गई, आसन देकर विधि विधान के साथ पूजन किया। राधा समागतम वीक्षय समुत्थायाति हर्षिता दत्तासना विधाने में पूजयामासे मिथिलय। राधा बोली, हे सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई मानो खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख होता है और बाद में दुख भोगना पड़ता है, गलत चीज खा लो तो पहले अच्छा लगता है बाद में बड़ा दुख मिलता है, उसी प्रकार सत्संग से पहले सुख होता है और बाद में बड़ा वियोग का दुख मिलता है। तो याद ना हम से दुखितासम तुयागतायाम सके लब्ध वस्तुवन पूर्व पथस्य कृतम सुखम यथा तथो दुखम तथा भामिनी मत प्रसंगत। राधा की ये बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गई। गोप देवी क्या हो गई, अनमनी हो गई, राधा से कुछ नहीं बोली। किसी दुखिया की बात की चुपचाप बैठी रही। गोप देवी को खिन्न जानकर राधिका ने सखियों के साथ विचार किया कि क्या हो गया, मेरे से कोई अपराध हो गया। सखियों से विचार करते हैं कि हमने कोई अपराध किया है क्या। फिर इस प्रकार कहा, इति श्रुत्वाते तन्वाक्यम विमना गोप देवता न किंचिदुचे श्री राधाम दुखिते व्यवस्थिताम विज्ञाय खेद संपन्नाम राधिकाम गोप देवताम सखे भी संविचार्याथ जगाद स्नेह तत्पराम। श्री राधा बोली, हे गोप देवी, तुम अनमने क्यों हो गई, हे कल्याणी मुझे इसका कारण बताओ। माता ने कुछ कहा है या पति ने कुछ कहा, ननद ने कहा या सास ने कुछ कहा है। यमना तुम कथम भद्रे वदमाम गोप देवते मात्रा भर्त्रा ननांद्रावा स्वस्वावा क्रोधे क्रोधे भर्तिताम। किसी सौत के दोष से तुम खिन्न हुई हो, सौत के दोष से खिन्न हुई हो या पति के वियोग से या अन्यत्र चित्र लग जाने से तुम्हें खेद हो रहा है। पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष में तुम्हारा मन लगा है, इसलिए खेद हो रहा है तुमको। अपने क्या कारण है? रास्ता चलने की थकावट से तुम्हें खेद हो रहा है, शरीर में कोई रोग हो जाने से खेद हुआ है, अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। सपत्नी कृत दोषेण सुभर्तुर विरहेण वा अन्यत्र लग्न चित्तेन च मना किं मनोहरे मार्ग खेदेन वा कच्चिन् विह्वला भूनृजाथवां शीघ्रं वदे महाभागे स्वस्य दुःखस्य कारणम्। किसी कृष्ण भक्त को छोड़कर या ब्राह्मण को छोड़कर जिस किसी ने तुम्हें कुछ गलत बात कही हो तो मैं उसकी चिकित्सा कर दूंगी। कृष्ण भक्त को छोड़ करके, ब्राह्मण को छोड़ करके मैं चिकित्सा कर दूंगी अगर कोई गलत बात किसी ने बोली है। कृष्ण भक्तम मृते विप्रम ये न के नापे कुत्सितम कथितम के तैरम भोरो तत्चिकित्सा करोमि हम। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी दे दूं, घोड़ा दे दूं तुमको, नाना प्रकार के रत्न दूं, वस्त्र दूं, धन दूं, विचित्र भवन दे दूं तुमको। नजास्वादीनि रत्नानि वस्त्राणि च धनानि च मंदिराणि विचित्राणि गृहाणि त्वं यदि इच्छसि। धन देकर शरीर की रक्षा करना चाहिए और धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करना चाहिए। जो बिना किसी कारण के मित्रता का निर्माण करता है वही मनुष्य परम धन में है। मैत्री स्थापित करके जो कपट करे उसको धिक्कार है। सुराधारण कहती हैं कि मेरा तुमसे कोई कपट नहीं है, जो मैत्री में कपट करे तो उसको धिक्कार है। उनका ये प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन राधा से हंसते हुए बोले। अब सुनो क्या बोलते हैं भगवान, सुनना ध्यान से। तस्या प्रेम वचः श्रुत्वा भगवान गोप देवता प्रयत्ना है राजेन्द्र श्री राधाम कीर्ति नंदिनी। गोप देवी ने कहा हे राधे, बरसाना की घाटी में जो मनोहर सकरी गली है उसी में होकर मैं स्वयं दधि बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में बंसी और बैत की छड़ी थी। उस रसिक ने लज्जा को तो छोड़ दिया और तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए एकांत वन में इस प्रकार कहने लगे, हे सुंदरी मैं कर लेने वाला हूं, मैंने टैक्स लेता हूं मैं, अतः तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे। राधे ब्रजम सानुगिरे सतीसु संकोच वीथे सु मनोहरासु यान्तिम सुतो माम निधि विक्रियार्थम रोध मार्गे नव नंद पुत्रहं बंसी धरो वित्र करा करे माम त्वरं गृहीत्वा बृहतं विलज्जहं मह्यं करा दान धनाय दानं देहेति जल्पन विपिने रसज्ञहं। मैंने कहा चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे लंपट को मैं कभी दान नहीं दूंगी। इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। तुभ्यम न दास्यामि कदापि दानम स्वयं भवे गोरस लंपटाए एवं मयोक्ते वचने दे भांडम नेता विस्तीर्णे कृते वाम सदधनहा। मटका फोड़कर और थोड़ी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी की ओर ईशान कोण वाली दिशा की ओर चल दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूं। भांडम समित्वा दधे किंच पीत्वा मैं चेदुरीयम नंदीश्वराद्रिर्विधि संजकामे इनाहमाराध्य मनाथ में जाता। आप निंदा कर रही हैं कृष्ण की, निंदा करें राधा की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण की निंदा करने लगे भगवान। अपनी निंदा करने जाति के ग्वाले हैं और रंग है काला कलूटा, धनवान नहीं है और वीर नहीं है, अच्छा शील नहीं है, अच्छा रूप भी नहीं है, ऐसे पुरुष पर तुमने प्रेम किया ये ठीक नहीं है। मैं कहती हूं तुम आज से शीघ्र ही कृष्ण को अपने मन से निकाल दो, कृष्ण का त्याग कर दो। जात्या सब गोपा के लिए कृष्ण वर्णो अधनी न वीरो नहीं शील रूपा यस्मिन तुया प्रेम कृतम सुशीले तेजस निर्मोहन मज्जय कृष्णम। इस प्रकार बैर भाव से कठोर वचन सुनकर राधा को बड़ा विस्मय हुआ। कठोर बातें सुनी अब सरस्वती का स्मरण करने लगी राधा रानी कि कैसे इससे बात करूं, अब तो दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन अब दोस्ती निभाना है तो कैसे बात करूं। सरस्वती का स्मरण करने लगी राधा जी, उनको तो बहुत गुस्सा आ गया राधा रानी को, अब कैसे मधुर वचन बोले तो सरस्वती का स्मरण कर रही राधा जी। इत्थम सवेरम परो संवच सच्छुस्वानुनंदिनी सुविस्मिता वाक्य पदे सरस्वती पदम स्मयंती निजगाद ताम प्रति। अब राधा ने कहा, अब सरस्वती की कृपा से उनको ऐसी बुद्धि मिली कि प्रेम पूर्वक समझा रही है। जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शिव आदि देवता पंचाग्नि तपस्या करते हैं, दत्तात्रेय सुखदेव कपिल अंगिरा जिनके चरण के का साधन स्पर्श करते हैं, तुम उनको कह रही हो कि कैसे तुम कह रही हो। यत प्राप्त ये विधिहर प्रमुखा तपंती वहनोत्पा परमिया निज योग्य रीत्याम दत्ता सुख कपिल आसुरी रंगिरायन पादार बिंद मकरंदर जात प्रशंती। उन्हें अजन्मा परिपूर्ण देवता लीलावतार धारी सर्वजन दुख हारी भूतल भूरी हार हरणकारी सत्पुरुषों के कल्याण के लिए प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसी करती हो, तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। तम कृष्णमादि पुरुषम परिपूर्ण देवम लीलावतार मजमाति हरम जनानाम भो भोरी हा भे भू भो भोरी भार हरणाय सताम सभाय जातम विनिंदसि कथम सखी दुर्विनीते। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं, तुम कहते हैं ग्वाला जाति बड़ी खराब होती है नीच जाती है, तो कहती हैं कि ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं और गोरस की गंगा में नहाते हैं, गौओं का स्पर्श करते हैं, गौओं के नाम का जप करते हैं, इतना ही नहीं दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। तो मैं समझती हूँ पृथ्वी पर गोप जाति से बढ़कर कोई दूसरी जाति है ही नहीं। तुम कहते गोप जाति बड़े नीच है, तो गोप जाति तो सबसे अच्छी जाति है। गा पालयन्ति सततम् रज सोगवाम चान गंगाम स्पृशन्ति च जपन्ति गवाम सुनाम्नाम प्रेक्षन्ति हरण शिमलम सुमुखम गवाम च जाते परान विदिता भवि गोप जाते। तुम उनको काला कलोटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की सुंदर कला का दर्शन करके उनमें मन लग जाने के कारण शंकर जी दूसरे सुंदर मुखों को छोड़ करके जटाजूट पीते, जटाजूट धारण करते हैं, हलाहल विष पीते हैं, उनकी सुंदरता में इतने पागल हैं शंकर जी, भस्म धारण करते हैं, कपाल धारण करते हैं, सर्प धारण करते हैं, उसी काले कलूटे के लिए पागलों की भांति दौड़ते फिरते हैं जिसको तुम काला कलूटा बताती हो। तत्कृष्ण वर्ण वीर सत्सुकलाम समीक्ष तत्मिन विलग्न मनसा सुसुकम विहाय उन्मत्त ब्रज धावती नीलकंठो बिभ्रत कपर्द विषय भस्म कपाल सर्पान। स्वर्गलोक सिद्ध मुनि यक्ष मरुद्गण समस्त नर किन्नर और नागों के स्वामी भी भक्ति भाव से जिनके चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मी ऐश्वर्य पाते हैं उनको तुम निर्धन बताती हो, उनको तुमने निर्धन बताया। स्वर्लोक सिद्ध मुनि यक्ष मरुद्गणानां पाला समस्त नर किन्नर नागनाथां यत्पाद पद्म मणि संप्रणिपत्य भक्त्या लब्ध प्रिया किल बलिं प्रतिदोषमि तस्मै। और तुमने उनको निर्बल बताया, तुमने कहा कि बड़े कमजोर हैं, बत्सासुर अघासुर कालियानाग बकासुर यमनार्जुन वृक्ष तृणावर्त सकटासुर और पूतन आदि का वध उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला है जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के एकमात्र बनाने वाले हैं और विनाश करने वाले हैं, उनको तुमने निर्बल बताया। मत्ताघ काली बकार्जुन धेनु का नाम आ चक्रवात सकटासुर कुतनानाम एताम बदाग्यम तस्य सो मुरारेर या कोटि सौंदन चियोन भवनास हेतु। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनमें जो है ना प्रेम नहीं है, वो बड़े कृतज्ञ हैं। तो बताती हैं, राधा बताती हैं, शंकर ब्रह्मा लक्ष्मी बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से ज्यादा प्यारे नहीं हैं, इनसे भी ज्यादा भक्तों से प्रेम करते हैं। और तुम उनको बताती हो कि कृतज्ञ हैं, वे भक्ति से बंधे होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। और श्री कृष्ण समस्त लोगों के सज्जन, सज्जनों के चूड़ामणि है। भक्ता प्रियो न विदिता पुरुषोत्तम संबुर विधि न चरमा न चरोहिणे भक्तनु व्रजति भक्ति निबद्ध चित्तम चूड़ामणि सकल लोक जनस्य कृष्ण। भक्तों के पीछे पीछे चलते हुए अपने रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तों के प्रति सदा अभिरुचि प्रकट करते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति अनायास देते हैं, भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति के बंधन में भी स्वयं बंधना पड़ता है। गच्छन् निजं जनम अनु प्रपुनाति लोकान् आवेदयन् हरिजने सुरुचिं महात्मान् तस्मादतीव भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति न कदापि सुभक्ति योगम्। गोपदेवी ने कहा कि उनकी भक्ति मत करो। तो कहते हैं भक्ति तो वो देते नहीं किसी को, मुक्ति तो दे देते हैं, अपनी भक्ति देते नहीं है। तुम कहते कि मैं भक्ति छोड़ दूं उनकी, गोपदेवी बोली। अब गोपदेवी क्या बोली? हे श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति से बढ़कर के है। अपनी वाणी और प्रवचन से वेद वाणी का अनुकरण करती हो, किंतु हे देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि श्री कृष्ण सचमुच आ जाएं, तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मान लूंगी कि तुम्हारा कथन सच्चा है। राधे तो दीयधिष्णाधिष्णम हसंतीं वाणीं श्रुति प्रकुशलेन विडम्बयन्तीं अत्रागमिष्यति यदाति हरि परेशः सत्यं ददाति वचनं तव देवी मन्ये। राधा बोली, हे सुंदरी, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहां आ जाएं, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूं, तुम्हें क्या दंड दूं, तुम बताओ। तो तुमको तो दंड देना पड़ेगा, तुम खुद ही बता दो तुम्हें क्या दंड दूं मैं। परंतु अपनी ओर से मैं कह सकती हूं, यदि मेरे स्मरण करने से बनमाली नहीं आएंगे तो सारा धन और ये भवन तुम्हें दे दूंगी मैं। अपनी तरफ से मैं बताती हूं, ये पूरा धन और भवन तुमको दे दूंगी अगर कृष्ण नहीं आए। अगर कृष्ण आ गए तो तुम्हारा क्या करूं, वो तुम बताओ। यथा गमिष्यति यदा हरि परेशः किं कारयामि भवतीं मदे तर्हि शुभ्रूं चेदागमो नहि भवेन्ननुमालिनः त्वं सर्वं धनं च भवनं च ददामि तुभ्यम्। नारद जी कहते हैं, राजन, राधा उठकर नंद नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी। उनके नेत्र अब बंद हो गए और भगवान को मौका मिल गया, राधा रानी के नेत्र बंद हो गए। अथ राधा समुत्थाय नत्वा श्रे नंद नंदनम अविश्वासने दध्यौ ध्यानस्य मितैलोचना। अब श्री हरि ने देखा प्रियतमा राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित है। उनके अंग अंग में पसीना आया, मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। ये देख अपना पुरुष रूप धारण करके, वो तो कहीं आना थोड़ी था उनको, कहीं से वहीं पर बैठे थे, अपना पुरुष रूप धारण कर लिया बैठे बैठे। भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों को देखते देखते वहां प्रकट हो गए, प्रसन्नचित हो घन गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले। उत्कंठिताम स्वेद युक्ताम बाष्पकंठीं प्रियाम हरि अस्तुपूर्ण मुखीं वीक्ष विप्रताम पौरुषीं तनुम पश्यन्ति नाम सखीनां च सहसा भक्तवत्सलं राधां प्राह प्रसन्नात्मा मेज गंभीरया गिराम। अब कृष्ण क्या कहते हैं, हे रंभोरु, हे चंद्र बदने, हे ब्रज सुंदरी सरोमणे, हे नूतन यौवन शालिनी, हे मानशीले, हे प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहां आ गया हूं।
रंभोरु चंद्र वदने ब्रज सुंदरी से राधे प्रिय नवन यौवन मानशीले उन्मील नेत्रमपि पश्य समागतं मां तूर्णं त्वया मधुर्या जगिरोपहूतम्।
अब आंख खोलकर मुझे देखो, हे प्रीतम कृष्ण आओ, ये बात सुन करके मैं तुरंत यहां आ गया हूं। मैंने सुना उसी क्षण गोकुल को छोड़कर बंसीबट और यमुना तट से वेग पूर्वक दौड़ता हुआ यहां आया हूं। कितनी बातें बनाई हैं, कहां से आया हूं, दौड़ करके आया हूं, सुना तुम्हारी।
आगच्छ कृष्ण इति वाक्य मताश्रितम् मे सद्यो विसृजन् गोकुले गोपवृन्दम् वंशी वटा च यमुना निकटात्र धावन् तत्प्रीतये च ललनेत्र समागतोऽस्मि।
मेरे आते ही कोई सखी रूप धारणी यक्षी थी, आसुरी थी, देवांगना थी या किन्नरी थी, पता नहीं कौन थी, तो मैं छलने के लिए आई थी, यहां से चली गई, जैसे मैं आया तो वो आगे वो चली गई। ऐसी नागिन पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए।
मई आगत है सती गति गता सखी रूपिणी काम यक्षा सुरे सुर वधु किल किन्नरो वाम मायावती छलै तुम भवतीम चतस्मान विश्वास एव न विजय उरंग पत्न्याम।
फिर राधा श्री हरि को देखकर उनके चरणों में प्रणाम करके परमानंद में निमग्न हो गई, उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया।
अथ राधा हरिम दृष्ट्वा नत्वा तं पादे पंकजं मुदमा व्यपरं राजन् सद्यः पूर्णे मनोरथान्।
श्री नारद जी कहते हैं फिर श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में श्री कृष्णचंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है।
एवं श्री कृष्णचंद्रस्य चरितानि अद्भुतानि च याचनोति नरो भक्त्या सकृतार्थो भवेन्नरः।
इस प्रकार से बड़ा सुंदर चरित्र था श्री राधा रानी का, तो आप लोगों ने सुना। आप किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं आपका प्रश्न
बड़ी।
इनका प्रश्न है कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि राधा रानी बड़ी हैं या कृष्ण बड़े हैं। राधा रानी बड़ी हैं ये इस प्रकार से जो लोगों के दिमाग में आई बात उसका कुछ कारण है, ऐसा नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि लोगों के दिमाग में ये बात आती है। इस ग्रंथ में भी एक वर्णन है राधा कृष्ण के विवाह का, तो कल मैंने ये सुनाया था जनकपुरी में राधा कृष्ण का विवाह है, तो उसमें वर्णन ये हुआ कि भगवान कृष्ण छोटे बालक हैं और नंद जी की गोद में वो जो है जाते हैं और नंद जी गौ में चराते हुए जाते हैं। भांडीर वन में गए तो मेघ जो है ना छा गए आकाश में, वर्षा हुई और नंद जी डर गए। उस समय राधा रानी आई तो बिल्कुल यौवन संपन्ना राधा रानी आई और नंद जी ने उनको देखकर के प्रणाम किया और फिर नंद जी ने कृष्ण को राधा की गोद में दिया कि तुम ले जाओ, यही तुम्हारे पति हैं, और प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। राधा रानी ने नंद जी को आशीर्वाद दिया। तो ये सोच करके कि इसका मतलब है कि राधा रानी बड़ी है, लोग जो है ऐसा कहते हैं।